ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فباب التواضع حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد بن أنس رضي الله تعالى عنه كان للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ناقة حدثني محمد قال أخبرنا الخزاري وابو خالد الأحمر عن حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى الأزباء وكانت لا تسبق فجاء أعرابي على قود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت الأزباء وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن حقا على الله أن لا يرفع شيء من الدنيا إلا وزاه ये तवाज़ू को बतलाना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन पाकीज़ा अखलाक की पूरी इंसानियत को तालीम दी उनमें एक तवाज़ू भी है। तवाज़ू ये दरअसल अरबी जबान का मसदर है और बाब तफाउल से है। उसका मादा मुजर्रद के अंदर वजा यजो आता है। वजा शय आदमी का किसी चीज को रख देना, डाल देना, छोड़ देना। और अगर मिन या अन के सिले के साथ आवे वजा मिन फुलानी या वजा अन फुलानी तो उसका मतलब होता है किसी की हैसियत को गिराना, किसी का दर्जा घटाना। और बाबे तफाउल में ले जाएं तवाजा फुलान तो उसका मतलब है आजीजी इख्तियार करना, इंकिसारी से पेश आना, मुनकसिरुल मिजाज होना। ये लुगवी तहकीक है तवाजू। तवाजू ये बहुत पसंदीदा खुल्क है इसकी बड़ी अहमियत है इस्लामी तालीमात के अंदर, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि जिसको अल्लाह तबारक व ताला ये सिफत अता फरमा दे तो वो बाकी सारी सिफात का मजमुआ बन जाता है। ये तवाजु दरअसल तकब्बुर के मुकाबले में है, और तकब्बुर का मतलब है आदमी का अपने आप को बड़ा समझना, दूसरों को हकीर समझना, सारी खराबियों और सारे बिगाड़ की जड़ सूफिया ने तकब्बुर को करार दिया है, उसका नाम ही रखा है उम्मुल अमराज। गोया जितने भी रूहानी अमराज और जितनी भी रूहानी बीमारियां हैं उन सब की जड़ तकब्बुर को करार दिया गया है। शैतान ने अल्लाह ताला के सामने तकब्बुर का इजहार किया। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अला नबीना वाली सलातो वस्सलाम को पैदा फरमाने के बाद और उनमें जान डालने के बाद फरिश्तों को सज्दे का हुक्म दिया, क्योंकि शैतान भी इबलीस भी उस वक्त फरिश्तों की जमात के अंदर शामिल था, तो वो भी अल्लाह तबारक व ताला के इस हुक्म का मुखातब था। उसने तकब्बुर करते हुए जवाब में कहा कि खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन, ये बारी ताला आपने तो मुझे आग से पैदा किया पर इनको मिट्टी से पैदा किया, आग की तबीयत और खासियत नीचे उठना है और मिट्टी जो है वो नीचे रहती है, मैं भला उसको कैसे सद्दा करूंगा। हालांकि उसने ये नहीं सोचा कि ये हुक्म कौन दे रहा है, जिसने इसको पैदा किया, हजरत आदम अली सलाम को पैदा किया, दोनों के मिजाज और तबीयत और दोनों के हालात से जो जात बखूबी वाकिफ है उसी ने इसको सद्दे का हुक्म दिया था। चाहिए तो ये था कि अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर देता और सद्दा कर लेता, लेकिन नहीं, उसने अपने आप को बड़ा समझा और बड़ाई का इजहार किया अल्लाह के हुजूर में। तो अल्लाह की बारगाह से वो दुत्कार दिया गया, मर्दूत करार दिया गया। सारी रूहानी जो बीमारियां हैं, गुस्सा, हसद, कीना, बोझ, इन तमाम बीमारियों की जड़ हजरत सूफिया ने तकब्बुर ही को करार दिया है। हजरत हकीमुल उम्मत नवर अल्लाह मरकदहु फरमाते हैं कि शैतान के अंदर तीन आयन थे, एक ऐन की कमी थी। बहुत बड़ा आबिद भी था, बहुत बड़ा आलिम भी था और बहुत बड़ा आरिफ भी था। आलिम का अंदाजा तो इससे लगाया जाए कि उसको मुअल्लिमुल मलकूत करार दिया गया था, और आबिद का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आसमान और जमीन में कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां उसने सजदा न किया। उस बाद ज़ईफ रिवायतों से मालूम होता है 7 लाख साल तक उसने अल्लाह ताला की इबादत की थी। और आरिफ भी था, बहुत बड़ा आरिफ, चुनांचे उसकी मारिफत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हजरत आदम अला नबियाना वाली सलात व सलाम को सजदा न करने पर जब अल्लाह तबारक व ताला ने उसको अपनी बारगाह से मर्दूद किया और दुत्कार दिया, ऐन उस वक्त वो अपना एक मुतालबा दुआ की शक्ल में जो है अल्लाह ताला के हुजूर पेश करता है। रब क्या है, रब्बे अंजिन नीला यौम युबासून, के लोग दोबारा जब जिंदा करके पैदा किए जाएं उस दिन तक की मुझे मोहलत दे दी जाए। हालांकि ये तो वो वक्त था कि अल्लाह तबारक ताला उस पर सख्त गजबनाक थे, और सब जानते हैं कि जिससे आप अपनी किसी दरखास्त को पेश करना चाहते हैं पूरा करवाना चाहते हैं तो देखते हैं कि भाई उसका मूड कैसा है, और वो अगर रजामंदी और खुशनुदी की हालत में है तो पेश की जाती है दरख्वास्त। बेटा जैसा बेटा भी बाप के सामने अपनी बात जब पेश करेगा तो पहले देखेगा कि इस वक्त कोई नाराजगी या कोई ऐसी बात तो नहीं है, तब बीवी अपने शौहर के सामने अपनी डिमांड पेश करती है तो पहले मूड देख लेती है उसके बाद पेश करती है। तो इंसानों का मिजाज है कि अगर किसी से नाराज हूं तो उस सूरत के अंदर उसका असर ये होता है वो सामने वाले की दरख्वास्त को कबूल नहीं करता। ये दरअसल इंसान के अंदर और तमाम मखलूकात के अंदर अल्लाह ताला ने जो एक इन्फियाली कैफियत, तासुर, किसी चीज से असर कबूल करने वाली कैफियत रखी है उसका समरा और नतीजा है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की जात तासुर और इन्फियाल से पाक है। अल्लाह ताला किसी चीज का असर कबूल नहीं करते, तो गोया शैतान इस चीज को समझता था कि भले मैंने अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं किया, उसकी नाफरमानी की, इसलिए अल्लाह मेरे ऊपर गजबनाक है, लेकिन इसके बावजूद मैं जो मुतालबा करने जा रहा हूँ, जो दरख्वास्त पेश करने जा रहा हूँ, मैं गोया इस नाराजगी की वजह से इस दरख्वास्त के रद्द होने का कोई सवाल नहीं, अगर वो काबिल कबूल होगी तो अल्लाह ताला कबूल फरमा लेंगे। इससे इसकी मारिफत का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन हजरत फरमाते हैं वो आशिक नहीं था, चौथे आयन की कमी थी। आशिक होता तो वो ये नहीं देखता कि कौन बड़ा कौन छोटा, बल्कि हुक्म किसने दिया है, मेरे महबूब ने दिया है, और अल्लाह के हुक्म पर सरे तस्लीम खम कर देता। बहरहाल ये तकब्बुर जो है वो सारी बुराइयों की जड़ है। उसके बरखिलाफ हजरत आदम अला नबीना वाली सलातु वसलाम का जो सबसे बड़ा कमाल था, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक ताला ने उनको फरिश्तों और शैतान के मुकाबले में फजीलत अता फरमाई, हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये आपका कमाल अब्दियत और आजीजी और इनकिसारी। हजरत आदम अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम के मिजाज के अंदर गोया शान बंदगी थी, शान अब्दियत थी, आजीजी और इनकिसारी थी। उसी वजह से अल्लाह तबारक ताला ने उनको बाकी दो मखलूकात के मुकाबले के अंदर फजीलत अता फरमाई। सवाल पैदा होता है फरिश्तों के मुतालिक, तो खुद कुरान पाक में बारी ताला का इरशाद है ला यासून अल्लाह मा अमर हूँ वयफलून मा युमरून, कि अल्लाह ताला के हुक्म की कभी खिलाफ वर्जी नहीं करते और जो हुक्म दिया जाता है वही करते हैं। फिर भी कहा देखो अल्लाह तबारक व ताला ने जब हजरत आदम अला नबीना वालिस्सलाम की पैदा करने का इरादा फरमाया तो आपने अपने इस इरादे का इजहार फरिश्तों के सामने किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, कि मैं जमीन के अंदर अपना एक नाइफ बनाने वाला हूँ, पैदा करने वाला हूँ। तो फरिश्त अब देखिए चाहिए तो ये था कि अल्लाह के इस इरशाद को सुनने के बाद शान बंदगी और शान तस्लीम का तकाजा ये था कि आगे कोई बात बाकी रहे नहीं जाती, लेकिन फरिश्तों ने कहा कि अतजलो फिया मयुसिदु फिया वयस्कुद दिमा वना नुसब्बिहु हो बिहम्दिका वनुकद्दिसु लक, के बारी ताला आप जमीन के अंदर आप एक ऐसी मखलूक को बनाने के लिए जा रहे हैं जो उसके अंदर फसाद फैलाएगी, खून बहाएगी, हम आपकी पाकी बयान करते हैं, आपकी तकदीस बयान करते हैं, क्या इसकी क्या जरूरत है। ये दरअसल अल्लाह ने अपने जिस इरादे का इजहार फरमाया दबे लफ्जों में उस पर एक सवाल ही कायम कर दिया था, इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने फौरन उनके जवाब में फरमाया इन्नी आलम माला तालम। वह ये शाहाना कम था, मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फौरन फिर जो है उन्होंने कहा सुभानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, बस आपने जो हमें बताया वही हमारे पास और कोई इल्म नहीं है। उन्होंने भी आखिर में तो इस बात को तस्लीम कर ही लिया, लेकिन शुरू के अंदर तो ये जो जवाब दिया गया, तो अगर शान बंदगी और अब्दियत आला दर्जे की होती इसकी नौबत ना आती, जबकि हजरत आदम अल्लाह नबियाना वाली सलात व सलाम का हाल ये था कि आपके अंदर आजीजी इनकिसारी शान अब्दियत और बंदगी का यह आलम था कि जब आपसे उस कसूर का सुदूर हुआ, आपसे कहा गया था कि इस दरख्त के करीब न जाना, और फिर भूल हो गई और उसको गोया इस्तेमाल कर लिया, तो अल्लाह तबरक तआला की तरफ से जब गिरफ्त हुई ये क्या किया, तो कोई जवाब नहीं, खामोश, बल्कि रो रहे सिवाय रोने के और कोई जवाब नहीं। हालांकि हजरत आदम अला नबियाना वाली सलात व सलाम के पास अकली एतबार से देखा जाए तो जवाब था। चुनांचे हदीस में आता है कि एक मौके पर वहां आलम या रवाह में हजरत मूसा अला नबियाना वाली सलात व सलाम ने हजरत आदम अली सलात व सलाम से पूछा कि आपने, आप तो वो हैं जिनको अल्लाह ने अपने दस्त कुदरत से बनाया और फरिश्तों को आपके सामने सज्दा रेज किया और जन्नत के अंदर आपको बसाया और आपको हुक्म दिया था कि आप फला दरख्त के करीब न जाएं, लेकिन आपने उसके खिलाफ किया जिसकी वजह से जन्नत से निकाले गए और ये सारी मशक्क़तें हमको उठानी पड़ी। ये सवाल हजरत मूसा अला नबियाना अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम को किया, तो हजरत आदम अला नबियाना अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया कि भाई तुम तो वही मूसा हो ना जिनको अल्लाह ताला ने तौरात अता फरमाई। कहाँ क्या तौरात में ये है ना, तौरात तो अल्लाह ताला ने मेरी पैदाइश से कई कितने साल पहले, सैकड़ों साल पहले अल्लाह ने लिख दी थी, तो उसके अंदर है वह आसा आदम और रब्बहू फगवा, कि आदम ने अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और वो रास्ते से हट गए, तो जो अल्लाह ने फैसला किया भला उसके खिलाफ मैं कैसे कर सकता था। तो हदीस में है हजरत मूसा अला नबियाना अलैहिस्सलाम लाजवाब हो गई, गया अपनी इस भूल का एक ऐसा जवाब हजरत आदम अला नबियाना अलैहिस्सलाम के पास था, हजरत मूसा अला नबियाना अलैहिस्सलाम जैसे नबी भी उनके सामने लाजवाब हो गए। लेकिन वहाँ मामला ये था कि सवाल करने वाले कौन थे, उन्हीं जैसे इंसान थे, लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से पूछा गया ये क्या हुआ, तो सिवाय रोने के और कोई जवाब नहीं, रोते रहो। कितने साल तो मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ तादाद बतलाई सालों की, इतने साल तक रोते ही रहे, यानी अपने इस गुनाह की माफी के लिए भी जबान से अल्फाज निकालने की जुरत और हिम्मत नहीं थी, यहाँ तक कि फिर अल्लाह ताला ने माफी के ये अल्फाज सिखलाए, फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैह, हजरत आदम ने अपने रब से जो है माफी के कलिमात सीखे और वो जब पेश किए तो अल्लाह ताला ने उनको उनकी तौबा कबूल की। वो क्या था, रब्बना ज़लमना अनफुसना वइलम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, वो अल्लाह ताला ही ने माफी के अल्फाज जब सिखाए तब वो अदा कर रहे हैं, उससे पहले अपनी जबान से माफी के अल्फाज अदा करने तक की जुरत नहीं थी। इससे उनकी शान अब्दियत और बंदगी का पता चलता है। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत आदम को ये जो फौकियत थी फरिश्तों और शैतान वगैरह के मुकाबले के अंदर, वो इसी शान अब्दियत की वजह से। बहरहाल ये तवाज़ु जो है ये ऐसी सिफत है, ऐसी खूबी है कि वो तमाम खूबियों की जड़ और बुनियाद करार दी जा सकती है। जैसे तकब्बुर एक ऐसा नुक्स है, ऐसी बुराई है जो सारी बुराइयों की जड़ है, तो तवाज़ु की बड़ी ताकीद आई और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़ाहुल्लाह, कि जो आदमी अल्लाह के वास्ते तवाज़ु इख्तियार करता है और आजीजी اختیار کرتا ہے, اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند فرماتے ہیں. بلکہ بعض روایتوں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں قسم کھا کر کے فرمائی. ایک تو یہ کہ بھائی صدقے سے مال کم نہیں ہوتا, کیونکہ دیکھنے کے اعتبار سے صدقے سے مال کم ہوتا نظر آتا ہے, آپ نے قسم کھا کر کے فرمایا کم نہیں ہوتا. اور کوئی آدمی اپنے کسی زیادتی کرنے والے کو معاف کر دے تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی جو ہے عزت میں کمی آئی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی کمی نہیں آئی. اور یہ توازو اختیار کرنے کی وجہ سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے آدمی گھٹ گیا یا نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اونچا مقام عطا فرماتے ہیں. توازو کا مطلب کیا ہے؟ توازو کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے کو کم درجہ سمجھے. دیکھو کم درجہ سمجھنا, اپنے کو بے حیثیت اور بے حقیقت سمجھنا, یہ ہے توازو. کہنا نہیں, کم درجہ کہنا یہ توازو نہیں ہے. ہم اپنی زبان سے اپنے آپ کو حقیر فقیر ذرہ بے مقدار ناچیز سمجھائے کہ نہیں, گنہگار بدکار ہے نا, بد کردار بولتے رہتے ہیں. لیکن اگر یہ حقیر فقیر کہیں کوئی سامنے سے کہ ہاں آپ حقیر فقیر ہی ہیں, پھر دیکھو کیسا چہرہ پھول جاتا ہے, سمجھائے کہ نہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو واقعتاً ایسا سمجھے, بھلے زبان سے اس کا اظہار نہ کرے. اوکے, ایک آدمی زبان سے اظہار کرتا ہے لیکن دل کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے تو اس کو توازو نہیں کہیں گے. توازو کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کا اپنے آپ کو بہت بے حیثیت اور جو بے حقیقت اور کمتر سمجھنا, بولنا کہنا یہ توازو نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے نا توازو کا گویا کی نمائش کرتے ہیں, کوئی آدمی تعریف کر دے تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میں تو ایسا نہیں ہوں, ایسا گویا تاکہ وہ مزید کہ نہیں نہیں آپ تو حضرت ایسے ہی, تاکہ مزید اس کی تعریف کرنے لگ جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شیخ الحدیث ہیں, کوئی اگر کسی بات پر ان کی تعریف کرتا تھا وہ چپ چاپ رہتے تھے, کچھ بولتے ہی نہیں تھے. یہ نہیں کہ بھائی میں ایسا نہیں ہوں, کیونکہ ایسا نہیں ہوں کہہ کر بھی آدمی سامنے والے سے مزید تعریفی کلمات اس کے زبان سے نکلوانے کی کوشش کرتا ہے. تو بہرحال یہ توازو کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی واقعتاً اپنے آپ کو کمتر سمجھے. اگر اپنی ذات سے کوئی خیر وجود میں آ رہا ہے تو اس خیر کے متعلق یہ سوچے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, اس کا فضل و کرم ہے, ورنہ میری ذات کے اندر کوئی خوبی نہیں. جیسے دیکھو آدمی کا جو جسم ہے اور آدمی کی ظاہری شکل و صورت کے اندر جو خوبیاں ہیں, کسی کی آنکھ بہت اچھی ہو, کسی کا چہرہ خوبصورت ہو, کسی کا بدن خوبصورت ہو, یہ ساری کمالات, ان میں کوئی بھی آدمی ان کے متعلق یہ نہیں سمجھتا ان کمالات کے متعلق کہ یہ میرے اپنے حاصل کیے ہوئے ہیں. کوئی آدمی اگر کبھی کہے بھی تو اس کے متعلق آدمی کہتا ہے کہ بھائی یہ خوبصورتی اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے, یہ تو اللہ کی عطا ہے, اللہ نے اپنے فضل سے یہ چیز مجھے عطا فرمائی ہے, اس کے حصول میں اور میرے اندر اس کے پائے جانے میں میری کسی گویا صحیح کو دخل نہیں ہے. یہی حال جو دوسری صفات ہیں, معنوی صفات, صفات معنوی کے متعلق بھی علم ہے, تقوی ہے, صلاح ہے اور خوبیاں ہیں, ان کے متعلق بھی یہی سمجھے یہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اپنے فضل سے یہ چیز عطا فرمائی ہے, ورنہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, میرے کسی اختیار کو دخل نہیں ہے, اللہ چاہے تو یہ ابھی چھین سکتے ہیں. بہرحال ایسا جب سمجھے حقیقی معنی میں تو یہ ہے کیا توازن. دراصل آدمی کی نظر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر ہو اور اس کی عطا کے اوپر ہو تو پھر کبھی بھی وہ اپنے کسی کمال کے اوپر جو ہے اترائے گا نہیں, اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا. بس ہر وقت اس کی نگاہ میں یہی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے محاذ اپنے فضل سے یہ چیز ہمیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی اور اللہ کی عظمت کا جو ہے अगर की तजल्ली आदमी के दिल के ऊपर आ जाए तो फिर हकीकत में वो अपने आप को कुछ समझता नहीं। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो कमालात अता फरमाए हैं पूरी इंसानियत में किसी को वो कमाल अल्लाह ने अता नहीं फरमाया। गोया बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर इंसानों में कोई बड़ी शख्सियत है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। सारी खूबियाँ आपके अंदर मौजूद और इन सारी खूबियों के बावजूद तवाज़ू भी आपकी सबसे आला, आपका तवाज़ू का मकाम भी इतना बुलंद कि कोई और आदमी उस मकाम तक पहुंच सकता नहीं। इस सिफत में भी आप सबसे आगे हैं। हदीसों में आता है आपके तवाज़ू के मुतालिक बाकायदा हज़रात मुहद्दिसीन ने जो शमाइल पर जो हदीसें जमा की हैं उन बाब मुस्तकिल हुजूर की तवाज़ू का कायम करते हैं। हदीसों में आता है एक मरतबा सफर में साहबा ने बकरी का फैसला किया कि बकरी ज़बह करके उसका गोश्त बनाएंगे, तो काम तकसीम किया, किसी ने कहा मैं ज़बह करूँगा, किसी ने कहा मैं खाल उतारूँगा, किसी ने कहा मैं पकाऊँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं लकड़ियाँ जमा करूँगा पकाने के लिए। साहबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल ये हम कर लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया ये तो मैं भी जानता हूँ कि तुम बखुशी ये काम कर लोगे, लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान मुमताज बन करके रहना नहीं चाहता और अल्लाह ताला भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते। अल्लाह को भी ये पसंद नहीं कि कोई आदमी अपना जो है अमजोलियों के अंदर अपने आप को बड़ा समझते हुए रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ु का तो ये आलम था। हदीसों में आता है कि कोई छोटी बच्ची अगर आपका हाथ पकड़ कर कहीं ले जाना चाहती तो आप वो जहाँ वो चाहती आप तशरीफ ले जाया करते थे। आप जो है ग़ुलामों की दावत कबूल कर लिया करते थे, आप बीमारों की इयादत के लिए जाया करते थे। उनमें भी कोई ये नहीं कि कोई बड़ा आदमी, छोटों की इयादत के लिए भी एक यहूदी बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करता था। बीमार हुआ, आपको पता चला, आप उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। अब्दुल्लाह इब्न उबै जैसा मुनाफिक जिसने आपको कितनी तकलीफें पहुँचाई, लेकिन जब वो बीमार हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी भी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। तो इसी तरीके से जो है आप ग़ुलामों की दावत कबूल करते थे, गधे की सवारी करते थे। ये सब कोई आदमी अगर मुतकब्बिर हो तो ये वो काम नहीं कर सकता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में होते हैं तो क्या करते हैं। वो घर में आदमी जो काम करता है वो अगर मशकीला फट गया है तो उसको सीते हैं, आपका जूता अगर फटा हुआ है तो उसको सी लिया करते हैं, अपने कपड़ों में से जू तलाश करते हैं। अगरचे आपके कपड़ों में जू पड़ती नहीं थी, लेकिन किसी दूसरे की अगर आ जाए इस माना करके जो है उसको तलाश करने की नौबत आती थी। और अपने हाथ से बकरी का दूध धोया करते हैं। भला जो आदमी मुतकब्बिर हो वो कोई ऐसे काम कर सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही एक मौके पर सहाबा से इरशाद फरमाया कि ला तुतरूनी कमा अतरतनी नसारा ईसा बिन मरियम, के तुम मुझे मेरी तारीफ में मुझे इतना न बढ़ाओ जैसा कि नसारा ने हजरत ईसा को बढ़ाया कि उनको अल्लाह के बराबर का दर्जा दे दिया, माबूद करार दिया। मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो गोया आपके हर चीज में तवाज़ु का अजीब गरीब आलम था। वैसे ये भी आता है आप रास्ते में बच्चों को भी सलाम करते थे। जाहिर है जो आदमी मुतकब्बिर हो भला बच्चों को कैसे सलाम कर सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत हर एक छोटे आदमी की भी दावत कबूल फरमाते थे। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कोई आदमी मुझे अगर बकरी का पाया हदीये में पेश करे या उसके लिए मेरी मुझे दावत दे तो मैं ज़रूर कबूल करूँगा। उस ज़माने के अंदर जो है ना सबसे घटिया चीज़ बकरी का पाया समझा जाए। आजकल तो कुकर की बरकत से जो है वो बढ़िया बनते हैं और हम लोग जो है बारह हांडी खाने के लिए जाते हैं, लेकिन उस ज़माने में ये जो है ना पाए को अच्छी तरह गलाने की कोई शक्ल नहीं हुआ करती थी, बस वो आग के ऊपर उसको सेंक लिया करते थे। और आग पर सेंकने की सूरत में वो कितनी मुश्किल से आदमी उसको खा सकता है। आज भी अगर वो अच्छी तरह गला ना हो तो उसका खाना आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तवाज़ु के अंदर भी बड़ा आला मकाम था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत शमाइल के अंदर मौजूद है कि सहाबा की निगाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई महबूब नहीं था। उसके बावजूद जब आप तशरीफ लाते थे तो सहाबा खड़े नहीं होते थे, इसलिए कि सहाबा जानते थे कि आपको ये खड़ा होना पसंद नहीं है। देखो, आप अपने लिए खड़े होने को पसंद नहीं फरमाते थे, ये गोया खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ू की बात थी। बहरहाल और भी बहुत सारी बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आप मुताला करें। कोई आपके साथ मुसाफा करता तो जब तक कि वो अपना हाथ ना हटाता आप अपने दस्ते मुबारक को हटाते नहीं थे। कोई आपके साथ गुफ्तगू करता तो जब तक कि वो अपनी बात पूरी न कर लेता वहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरे अनवर फेरा नहीं करते थे। ये सब गोया आला दर्जे की तवाज़ु अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी, क्योंकि तमाम ही अखलाक में हर हर खुल्क में आप सबसे बड़े हुए थे और हर खुल्क में आप आला मकाम के ऊपर फाइज थे। ये तवाज़ु के अंदर भी आपका यही हाल था। और आपके तरीके पर चलने वाले अहले इल्म जो हैं उनका भी यही हाल। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हाँ, हजरत जब खलीफा बनाए गए एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे, उमर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो आपकी खिलाई कौन थी जिन्होंने उम्मे अयमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिन्होंने बचपन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाया था। खिलाया ना, बच्चे को लेके संभालते हैं ना, खिलाना खेल से, तो दूध पिलाना वो मुर्जिया कहलाती। तो दाई और खिलाई दो हुआ करती है, एक वो औरत तो दूध पिलाने का काम करती है और दूसरी जो बच्चे को संभालने का काम करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में इन्होंने संभाला था, ये आपकी खिलाई थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा उनके घर तशरीफ ले जाते थे उनकी खैरियत मालूम करने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बना गए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयमन के यहाँ तशरीफ ले जाया करते, चले हम भी जाएं। जब ये दोनों वहाँ गए तो हजरत उम्मे अयमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके रोने लगी। तो उस पर इन्होंने कहा कि आप क्यों रोती हैं, अल्लाह ताला के यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नेमतें मिली वो यहाँ के मुकाबले में ज़ाहिर ज़्यादा हैं, कोई आप यहाँ के मुकाबले में वहाँ ज़्यादा राहत से हैं। तो कहा मैं तो इस पर नहीं रोती, मैं तो इस पर रोती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से तशरीफ ले जाने की वजह से दुनिया वही की बरकत से महरूम हो गई। ये सुनकर ये दोनों हजरात भी रोने लगे। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक है, एक मरतबा खुतबा दे रहे थे तो उनके कुर्ते के ऊपर 17 पैवंद थे, 17, उनमें से एक पैवंद तो चमड़े का था। हालांकि उनकी हुकूमत बहुत दूर दूर तक चली, आज कई ममालिक ऐसे हैं जो आपकी हुकूमत के रकबे में उस जमाने में मौजूद थे। ये आपकी तवाज़ु का नींद जहाँ आती थी दरख्त के नीचे जो है वो अपनी इसके ऊपर हाथ रख करके हाथ के ऊपर जो है रुखसार रख करके सो जाया करते थे। मैंने गोया आराम करने के लिए भी कोई ख़ास इसका अहतमाम नहीं किया करते थे। ये अल्लाह ताला के जो बंदे नेक हुआ करते हैं उनके यहाँ इसका बड़ा अहतमाम। हजरत जो है हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक हमारे हजरत ने फरमाया, एक मरतबा वो मस्जिद के सहन में आप हदीस का सबक दे रहे थे और अचानक बारिश शुरू हो गई, बारिश बरसना शुरू हुआ, बच्चे किताब लेकर मस्जिद के अंदर भागे। तो हजरत ने वो जूते बाहर जो पड़े थे वो हजरत सब बच्चों के जूते लेकर के ताकि वो पानी से भीग करके ख़राब ना हो जाएं, वो अपने हाथ से एक महफूज जगह पर रखने लगे। बच्चे ये देख करके एकदम शर्मिंदा हो गए, देखो आपने ये नहीं सोचा कि ये इनके जूते हैं। जिसमें वाकई अपने आप को जो आदमी बेहकीकत समझता हो वही ये काम ऐसा कर सकता है। हजरत ना माँ याकूब साहब नानोद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है, हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा एक आदमी ने दावत की, देहात के आदमी ने, जब वो दावत का दिन वक्त आया तो उसको सवारी भेजनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह के बंदे ने सवारी भी नहीं भेजी। हजरत कबूल कर चुके थे, गांव करीब था, पैदल तशरीफ ले गए और वहाँ खाने से फारिग होने के बाद आम का मौसम था, तो उसने जो है एक बड़ी गठरी में आम भी बांध दिए कि हजरत ये ले जाओ आपके लिए। अब जो है एक तो सवारी नहीं दी थी, अब पैदल आए थे, पैदल जा रहे थे, आम हाथ में लेकर के जा रहे हैं, तबीयत में नजाकत थी, तो इसलिए एक हाथ से पकड़े थक गया, दूसरे हाथ से इस तरह हाथ बदलते रहे यहाँ तक कि दोनों हाथ छल हो गए। और जब देवबंद करीब आया तो ख्याल आया दोनों हाथों में भी अब सकत नहीं रही, तो सर के ऊपर वो पोटली रख दी और गए देवबंद के बाजार में से। अब पोटली रख दी तो वो दोनों हाथों को आराम मिल गया, कहिए अरे यार ये तरकीब पहले से समझ में नहीं आई। अब बाजार में से गुजर रहे हैं और दुकानदार अपनी दुकान से नीचे उतर कर हजरत को सलाम कर रहे हैं और हजरत इसी हाल में सलाम का जवाब देते हुए जा रहे हैं, ये नहीं सोचते कि भाई ये मेरे सर पर ये गठरी रखी हुई आम की बोटली। तो बहरहाल ये अल्लाह के नेक बंदे जिनके मिजाज में ये तवाज़ु होती है हकीकत में, वो उसके मुताबिक गैर इख्तियारी तौर पर, कोई तकल्लुफ से नहीं, गैर इख्तियारी तौर पर इन सारे कामों को अंजाम देते हैं। तो बहरहाल ये तवाज़ु जो है वो बड़ी पसंदीदा खसलत है। और गए उसकी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे लोग जो मदरसे में पढ़ते हैं करीमा में, फिर बयान है तवाज़ु, तवाज़ु के बयान में जो उसकी खूबियाँ बयान की हैं, एक बड़ी अजीब बात फरमाई, निहत शाख पुरमेवा सरबर ज़मीन, के जो दरख्त की जिस शाख और डाली के ऊपर फल होते हैं वो डाली क्या होती है, झुकी हुई रहती है। तो जो आदमी साहिब कमाल होता है, अगर वाकयतन साहिब कमाल है तो वो भी झुका हुआ ही रहेगा। तो हकीकत तो यह है ये तवाज़ु जो है ऐसी पसंदीदा सिफत है जिसकी बड़ी ताकीद की गई है। और जैसा कि बतलाया वो तकब्बुर के मुकाबले में है, जैसे तकब्बुर सारी खराबियों और बुराइयों की जड़ है, ऐसे तवाज़ु सारी खूबियों की जड़ करार दी जा सकती है। चुनांचे यहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी के मुतालिक उन्वान कायम किया, रिवायत पेश करते हैं, हदसना मालिक बिन इस्माइल हदत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कानत नाकतुन लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसम्मल असबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऊँटनी थी उसका नाम था असबा। असबा असल तो कहते हैं कान कटी हुई, लेकिन हदीस की शराह करने वाले उलमा ने लिखा है कि उस ऊँटनी का कान कटा हुआ नहीं था, नाम उसका अजबा था। वो कानत ना तुस्बको, और सफर में कभी भी किसी ऊंट से वो पीछे, हमेशा आगे, उसके आगे कोई ऊंट कभी भी उससे आगे जा सकता नहीं था, बड़ी तेज रफ्तार। फजा आरामियुन अला कौदिन लहू फसबका, हजरत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाती एक मरतबा एक सफर में एक देहात का रहने वाला अपना एक नौजवान ऊंट, 2 साल की उम्र का होता है, उसको कऊद कहते हैं, उस पर सवार होकर के आया और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसका वो ऊंट जो था वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी से आगे बढ़ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी पीछे रह गई। फश्तद ذلك على المسلمين وقالوا سبقت الأزبار, ये चीज मुसलमानों को सहाबा को बड़ी गिरान गुजरी। जाहिर है जिसके साथ मोहब्बत का अकीदत का ताल्लुक होता है, सहाबा को जो मोहब्बत का ताल्लुक था, जो अकीदत का ताल्लुक था, उसके पेश नज़र ये सोच भी नहीं सकते थे और ये गवारा भी नहीं कर सकते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी पीछे रह जाए, कोई उससे आगे बढ़ जाए। इसलिए जब ये ऊँट आगे बढ़ गया तो सहाबा को बहुत गिरा मालूम हुआ और कहने लगे ऊँटनी अजबा पीछे रह गई, अजबा पीछे रह गई। तो फ़काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, شاہ نے فرمایا ان حقا علی اللہ ان لا یرفع شیء من الدنیا الا وضعه. اللہ پر لازم ہے کہ جب دنیا کی کوئی چیز سر ابھرے تو اللہ اس کو نیچا دکھلائے. گویا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز, حالانکہ اونٹنی کا اس طرح آگے تیز رفتاری سے آگے بڑھنا یہ تو جانور ہے, انسان کے اندر جو خباثت ہوتی وہ بات وہاں نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس اونٹنی میں جب یہ بات تھی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ایسا لائے اللہ تعالیٰ کہ وہ بھی پیچھے رہ گئے. اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت کا ایک نظام, تو وہ اس روایت کو اس باب میں لا کر امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ توازن اختیار نہیں کرتے, اپنے آپ کو لمبا کھینچتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں, تو یاد رکھو آپ کی یہ بڑائی جو ہے رہنے والی باقی رہنے والی نہیں ہے. ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, نیچا دکھائیں گے. اللہ نے اپنے اوپر لازم, اس لیے انسان کو تکبر زہر. عربی کی کہاوت ہے کہ بھائی تکبر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو. پہاڑ پر کھڑا ہوا آدمی جو ہوتا ہے نا, وہ نیچے جب لوگوں کو دیکھتا ہے تو نیچے کے لوگ اس کو کیا نظر آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. تکبر کرنے والا بھی دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے, لیکن وہاں معاملہ یہ بھی ہے کہ نیچے والے جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی چھوٹا ہی نظر آتا ہے. چنانچہ دنیا کا دستور ہے کہ جو آدمی متکبر ہوتا ہے اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو لوگ بھی اس کو حقارت کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں. قدرت کا ایک نظام ہے. گویا آدمی کو چاہیے کہ کبھی بھی اللہ کے بندوں میں سے کسی کو حقیر نہ سمجھے. بہت سے اس میں مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المسلم اخ المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ, کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس کے ساتھ ظلم اور حق تلفی سے کام لیتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم, ایک آدمی کی برائی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے عام طور پر عربوں کے اندر نسب اور خاندان کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنے کا مرض تھا, تو قرآن میں باری تعالیٰ نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, باری تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا تم سب ایک مرد اور عورت کی اولاد ہو, سب حضرت آدم اور حضرت ابا سے پیدا ہوئے ہیں, کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, اور اگر ہے اللہ کے نزدیک باعزت وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو, گناہوں سے بچنے والا ہو. اس کے اندر تقویٰ کیا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, اس لیے کسی کے متعلق بھی کوئی فیصلہ بھی دیکھیے ظاہری حالت سے جیسے آدمی کے کمالات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ایک آدمی جو ہے کلیکٹر ہے اور ایک آدمی جو ہے کوئی اور اونچے عہدے کے اوپر ہے, کوئی آدمی بہت بڑا عالم ہے. اب اگر ایک آدمی جو ان کے اندرونی حالات سے حقیقی حالات سے واقف نہیں, اس کے سامنے ان سب آدمیوں کو کھڑا کر دیا جائے تو ان کی شکل صورت دیکھ کر وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ شیخ العدیث ہے اور یہ فلانا اتنا بڑا عالم ہے اور یہ اتنا بڑا عہدے والا ہے. آدمی کی ظاہری شکل و صورت سے کسی کے عہدے کا اور بڑائی کا پتہ نہیں چلتا, ایسے اندرونی اوصاف کا بھی پتہ نہیں چلتا. کسی کے متعلق بھی ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے, اس لیے کسی کے متعلق بھی تحقیر کا جذبہ اپنے اندر ہونا نہیں چاہیے, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ غرور اور کبر ہی ہے جو ساری خرابیوں کی جڑ ہے. ضرورت اس کی ہے کہ آدمی توازن اختیار کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تمام رضائل سے اور خاص طور پر اے اللہ تکبر سے ہم کو پاک اور صاف فرما اور محاسن اخلاق سے اور خاص طور پر اے اللہ تواضع سے ہم کو مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے اے اللہ ان کی کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا ہماری اولادوں کو اے اللہ عقائد حق علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.